તારીખ 27/12/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 65
શ્રી સમયસર પરમાવન જીવધિકાર 14 ગાથા ટીકા ચંતી शुद्ध नैका विषयभूत आत्मा कैसा है, पांच विशेषताओं से दृष्टांत पुरस्सर उसको समझाते हैं। पहला दृष्टांत दिया कमलिनी पुत्र का, कमल के का पत्ता जो है पानी पर रहता है हमेशा, संयोग से पानी उसको स्पर्श किया हुआ दिखता है। स्वभाव से देखे तो पत्ता कोरा है, बिल्कुल भीगा नहीं हुआ है। उस दृष्टांत अनुसार अब आत्मा की बात करते हैं। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बदस्पृष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। संसार अवस्था में जीव कर्म बंधन में अनादि से पड़ा है, वो बात संयोग अपेक्षा से ठीक है और उनकी ऐसी योग्यता भी है। तथापि उसको गौण करना है। तथापि कह करके क्या कहते हैं कि उसको गौण करके पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव। कैसा है आत्म स्वभाव कि जो पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित होने योग्य नहीं है। स्वभाव को पुद्गल स्पर्श नहीं कर सकता, स्वभाव को विभाव स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा स्वभाव है। ऐसा आत्म स्वभाव उसके समीप जाकर अनुभव करने पर, समीप जाना माने क्या, कि समीप जाना अर्थात मैं ही ऐसा हूँ, दूर नहीं रहना। समीप जाना का मतलब क्या है, दूर नहीं रहना। तो दूर नहीं रहने तो किंचित मात्र दूर नहीं रहना। आत्म स्वभाव तो स्वयं का रूप है, स्वयं का स्वरूप है। तो मैं ही ऐसा हूँ ऐसा मुख्य करके, मेरे में कर्म बंधन नहीं है, मैं त्रिकाल अबंध स्वभावी अबंध स्वरूपी हूँ, ऐसा अपना स्वरूप में अपनापन करके, अपना स्वरूप में अपनापन करके दूसरे में अपनापन करना हो तो कुछ बाधा हो सकती है? अपने में अपनापन करने में कौन सी बाधा है? समीप जा करके अनुभव करने पर, ज्ञान करने अनुभव करने पर लेते हैं, समीप जा करके अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ और असत्यार्थ है। जो कर्म का बंधन है उस स्वभाव को लागू नहीं पड़ता और कर्म का अस्तित्व भी वहाँ नहीं है। स्वभाव में अभूतार्थ मैंने वहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। उपयोग को स्वभाव की तरफ तो ले जावे, लेकिन वो कैसे जाएगा कि अहमपना स्थापित होगा तक। जहाँ तक अहमपना नहीं आएगा वहाँ तक तो उपयोग उसी तरफ जाएगा नहीं, अपने और उपयोग आएगा नहीं। समीप जा करके, स्वरूप के समीप जा करके अनुभव करना, मैंने दूरी मत रखना, अपना स्वरूप से अपने भाव में दूरी मत रखना। पूर्ण वो प्रकाश में आता है कि अपने परमात्मा को दूर मत देख, स्वयं के रूप में देख, यही स्वभाव समीपता है। मैंने अन्य भाव से मत देख, अनन्य भाव से देख, अन्यपना मत रख, ऐसा। जैसे अहमपना और जगह करते हैं वैसे करना। आपको अहमपना करना आता तो है, लेकिन गलत जगह पर भी जो आता है तो अपने आप में आने में कौन सी गड़बड़ी है? दिखाई दे रही है किसको? मतलब सामने वाली वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन किसको? तो घटपट आदि जाण तू तेथी तेने मान, जाणनार ने जाण नहीं आते केवू अज्ञान। दूसरी वस्तु दिखाई रही है लेकिन किसको दिखाई रही है? तो देखने वाला है उसको दिखाई रही है कि देखने वाला है ही नहीं है और दिखाई रही है? तो उसको कितना गौण कर रहे हो? दूसरी वस्तु देखने के काल में कितना गौण कर रहे हो? अत्यंत गौण कर दिया। जिसको मुख्य रखना है उसको गौण कर दिया। जो अपनत्व भी करते हैं, नहीं द्वैत नहीं है, अद्वैत है। देखने वाला देखता है वो तो वचन व्यवहार है। वस्तु एक अभेद है, वस्तु में दोपणा नहीं है। मर्यादित दोपणा है उसको गौण कर देना है और अभेदता को मुख्य करनी है। ये प्रश्न आता है अपनत्व कैसे करें। ठीक है, अपनत्व करते हैं कैसे करते हैं? उसको अपना परिणमन को देख करके अवलोकन करके समझो कि हम कैसे अपनत्व कर रहे हैं। जहाँ हमारा स्वरूप नहीं, जहाँ हमारा अस्तित्व नहीं, वहाँ अपनत्व करते हैं। और जहाँ अस्तित्व है वहाँ अपनत्व कैसे करें वो प्रश्न उठता है। देखिए कैसी विचित्रता है, ये कितनी विचित्रता है। थोड़ा शांति से अपना अपने आप में ये कैसी गड़बड़ी चल रही है और वो कैसे मिटे उसका बराबर संशोधन करना चाहिए। हाँ तो देखो कि वहाँ सुख है कि नहीं है, तलाश करो। फिर वास्तविक जहाँ अपनत्व हो रहा है वहाँ वास्तविक सुख है कि नहीं है मेरा, उसकी तलाश करो, जांच करो। तो सुख नहीं है और सुख के सुख का आभास होता है तो ये भ्रांति है, ये धोखाबाजी है। तो खुद को ये धोखे में रख करके दुखी होता है, उसका परिणाम क्या है? नतीजा वो है कि उससे दुख होता है। आत्मा का स्वभाव में पुद्गल कर्म का बंधन और स्पर्शन वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ऐसे मैं कर्म बंधन से रहित हूँ ऐसा स्वभाव का अनुभव अपने रूप करना चाहिए। एक तो ये बात कहा, कल वहां तक चले थे। तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, जारी इत्यादि पर्याय से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अन्यत्व मैंने क्या, कि जो ढक्कन है वो घड़ा नहीं, घड़ा है वो जारी नहीं। एक ही मिट्टी की अनेक पर्याय होती है, बार बार घड़ा फूट जाता है, फिर मिट्टी मिट्टी में मिलती है, फिर दूसरा उसमें से बर्तन बनता है। तो ऐसा अन्य अन्यपणा, अन्य अन्य पर्याय, अन्य अन्य अवस्थाएं, सत्यार्थ है, भूतार्थ है पर्याय को देखने पर। तथापि सर्वतः अस्खलित, मैंने सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कितना भी अवस्था बदली मिट्टी ने, मिट्टी तो मिट्टी ही रही, मिट्टी का स्वभाव नहीं बदला, मिट्टी अपने स्वभाव से अन्य नहीं हुई, अनन्य रही। तो ये जो अन्यपना है वो स्वभाव में अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसका वहां स्थान नहीं है। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। एक ही आत्मा चार गति में भटकता है, तो मनुष्य होता है, मैंने नारकी होता है, देव होता है, तुरियंत होता है। तो ऐसी पर्याय का अनुभव करे तो अन्य अन्य अवस्था हुई है, अवश्य हुई है, नहीं हुई है सो बात नहीं है, कल्पना नहीं है। वो जैसे वेदांत कहता है कि ये सब माया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। चार गति की पर्याय जीव को संसार में होती है और उसका अनुभव भी होता है। क्या, उसी पर्याय का अनुभव भी होता है, फिर भी वो मुख्य करने लायक नहीं है, किंतु गौण करने लायक है। तो वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय है उसको गौण करने लायक है। वर्तमान की मनुष्य पर्याय गौण करने लायक है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसा लेना है। फिर मनुष्य का जो भी जितना भी संबंध हो ये सब छोड़ देना है। मनुष्य नहीं तो मनुष्य का शरीर भी मैं नहीं, मनुष्य का शरीर नहीं तो स्त्री पुरुष आदि में नहीं। फिर जितने भी संबंध है, पिता के, पुत्र के, भाई के, बहन के, मामा के, भांजा के, जो भी जितने भी है, कोई भी मैं नहीं, ये सब आ जाता है। तथापि मतलब उसको गौण करके सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाला एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो यहाँ क्या कहा कि स्वभाव तो स्वभाव से अस्खलित रहता है, सर्वतः मैंने सर्वथा अस्खलित रहता है, सर्व प्रकार से अस्खलित रहता है। किसी भी प्रकार से स्वभाव में दूसरा होता नहीं, एक चैतन्याकार स्वभाव है, मैंने चैतन्य एकाकार स्वभाव है, तो तीनों काल एकाकार चैतन्य स्वभाव ही रहता है। मैं एक चैतन्याकार स्वभाव हूँ, एकाकार चैतन्य ऐसा मैं हूँ, ऐसा स्वभाव के समीप जाना, तो वहाँ नर नारकादि पर्याय दिखने में आएगी, क्योंकि है ही नहीं वहाँ। नहीं है इसलिए इसका अनुभव नहीं होगा, और स्वभाव जैसा है वैसा अनुभव होगा। दृष्टांत इसलिए देते हैं कि देखिए माटी में से अनेक बर्तन होते हैं, लेकिन माटी तो अस्खलित रहती है। माटी माटीपना से च्युत होती है क्या कि नहीं होती है? माटी माटी के स्वभाव से बदलती नहीं, च्युत नहीं होती, मतलब बदलती नहीं। ऐसे आत्मा नर नारक आदि अनेक पर्याय धारण करता हुआ भी आत्मा रूप से मिट जाता नहीं, बदल जाता नहीं। चैतन्य चैतन्य ही रहता है, सामान्य चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे पर्याय निबोध की हो, चाहे पर्याय सिद्ध की हो, अन्य गति क्या, पंचम गति भी ले लो ना, तो भी जो सामान्य स्वरूप है, आत्मा का मूल स्वरूप है, वो जैसा का तैसा ही बना रहता है, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता।
अभी सिद्धालय में हूँ।
हाँ, अभी सिद्धालय में हूँ, कल रात को आया ना। तो मतलब सिद्ध स्वरूप में मैं हमेशा, मेरा अस्तित्व रहा है, कहीं भी मेरा अस्तित्व मेरे सिद्ध पद से, मूल स्वरूप से विचलित हुआ नहीं, अस्खलित रहा है, कभी च्युत नहीं हुआ मैं मेरे स्वरूप से। लेकिन जब मैं भूल जाता हूँ मेरे स्वरूप से, तो बड़ी बड़ी गड़बड़ी होती है। मैं मनुष्य हूँ ऐसे अनुभव में, मैं आत्मा हूँ ये अनुभव नहीं रहने वाला, और मैं एकाकार चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ ऐसे अनुभव में मैं मनुष्य हूँ ऐसा अनुभव रहने वाला नहीं है। हाँ, मनुष्यत्व का ज्ञान रहेगा, लेकिन मनुष्यत्व का अनुभव नहीं रहेगा। अनुभव और जानना में फर्क होता है ना, जानना एक बात है, अनुभव करना दूसरी बात है। स्वपर प्रकाशक जानना होता है, स्व पर अनुभवन कभी होता नहीं है। पर का अनुभव ही नहीं होता क्या? पर का अनुभव होता ही नहीं। जो मानता है कि मुझे पर का अनुभव होता है, वो धोखा है, वो भ्रांति है, इसलिए उसको मिथ्या अनुभव कहने में आता है। वो मिथ्या अनुभव है, वास्तव में आत्मा आत्मा है, आत्मा को अन्य का अनुभव हो सकता नहीं है। कितनी बड़ी, गुरुदेव कहते थे कि एक मन की आठ पांचेरी होती है, 40 शेर का मन होता है ना, पुराने जमाने की बात है। तो आठ में एक पांचेरी की भूल हुए, दो पांचेरी की भूल हुए चले, लेकिन आठ में नौ पांचेरी की भूल है ये क्या? एक मन में नौ पांचेरी की भूल है ये, आठ पांचेरी की नहीं है। इतनी बड़ी भूल है। हम हमारे जात को बहुत बुद्धि वाला, सूक्ष्म वाला, चालाक, होशियार, विचक्षण समझते हैं, लेकिन मन में नौ पांचेरी की भूल चलती है। हाँ, कैसी भूल चलती है? मन में नौ पांचेरी की भूल चलती है।
विचक्षण क्या कहना?
क्या कहना? अपने आप को जो दुखी करे, अपने आप का अहित करे, उसमें उनकी क्या प्रशंसा करना? तो प्रशंसा करने लायक बात है क्या? क्या कहा? कैसा है स्वभाव? के सर्वतः अस्खलित एक चैतन्याकार है, अनंत पर्याय चार गति की हुई, लेकिन इस पर्याय भेदों से स्वभाव भेदा गया नहीं, पर्याय भेदों से स्वभाव को भेदा गया नहीं, वो अभेद ही रहा। जैसे तालाब में पानी पड़ा है, उसको कोई लकड़ी मारे, उसमें कोई पत्थर फेंके, तो पानी अलग हो जाएगा क्या? टुकड़ा हो जाएगा कि कुछ खलबली होगी, लेकिन पानी तो पानी ही बना रहेगा। पानी में दो टुकड़ा होने वाला, लकड़ी मारने मारने से पानी का टुकड़ा नहीं होता, ऐसे पर्याय भेदों से अभेद स्वभाव में किंचित मात्र भी फेरफार उथल पुथल कुछ होता कोई असर ही नहीं पहुंचती, पर्याय की असर स्वभाव तक पहुंचती ही नहीं, क्यों कि उसका अस्तित्व वहाँ नहीं है। ऐ भूतार्थ मतलब उसका अस्तित्व वहाँ नहीं है, त्रिकाली स्वभाव में पर्याय का अस्तित्व नहीं है, ये बात है। ऐसे आत्म स्वभाव में तन्मय भाव से अहमपना करके अपने रूप में अनुभव करना, वही स्वभाव समीप जाना है, उसको स्वभाव की समीपता कहने में आती है। ऐसा अनुभव करने पर ये जो पर्याय के भेद है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। मैंने ज्ञानी कभी अपने को मनुष्य मानते नहीं, न मनुष्य मानते, न गृहस्थी मानते, न त्यागी मानते, क्या न पंडित मानते, न विद्वान मानते, न मूर्ख मानते, न राजा मानते, न रंक मानते, कुछ मानते नहीं, मैं आत्मा हूँ उतना ही मानते। त्रिकाली सभी आगम में यही बात कही है, 12 अंग का सार वही है, 12 अंग का सार यही है कि अपने मूल स्वरूप में वास्तविक स्वरूप में अपनापन कर लेना। दूसरी जगह अपनापन किया है उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में अपनापन करना, पर इसलिए उसको दिखाते हैं आचार्य महाराज, इसलिए तो दिखाते हैं। तीसरा, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। क्या कहा कि समुद्र में बाढ़ आती है और समुद्र में ओट भी आता है, तो कहते हैं कि अभी पानी बढ़ गया अभी पानी घट गया, अगर पूरा समुद्र के देखो तो कोई उसमें बदघट हुई नहीं है, और वैसे भर्ती आती है तो उछलते हैं, मुझे तरंग सब बहुत उछलते हैं और उसमें स्थिर रहता है पानी, लेकिन नीचे पानी के दल में जाओ तो वो नित्य स्थिर है। कैसा है समुद्र भीतर में तो नित्य स्थिर है, जो भी तरंग है कुछ ऊपर ऊपर के लेवल में होता है, भीतर में देखो तो पानी बिल्कुल धीर स्थिर है समुद्र का, वहाँ कोई हलचल होती नहीं है। ऐसा समुद्र का स्वरूप है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है सत्यार्थ है। आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर, पर्याय में अनेक प्रकार की वृद्धि हानि होती है, कभी किस गुण का परिणमन बहुत कम हो जाता है कभी बहुत बढ़ जाता है, जैसे निबोध में जाता है तो ज्ञान अनंतमय भाग में रह जाता है, और मनुष्य होता है देव होता है मति ज्ञान सत ज्ञान अवधि ज्ञान वहाँ तक ज्ञान बढ़ता है, तो वृद्धि हानि तो होती है, ज्ञान की पर्याय में कमी बेसी तो होती है, ऐसे सर्व गुणों की पर्याय में कमी बेसी होती रहती है। तो ऐसी अनियतता, मैंने एक रूपता उसको पर्याय अपेक्षा से ठीक है होती है, तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। लेकिन अपने भीतर में जो आत्म स्वभाव है उसमें कोई वदघट होती नहीं, अवदघट है, शब्द लिया है पत्र में सुधा ने, अवदघट स्वभाव है, बढ़ता भी नहीं घटता भी, जैसा स्वभाव है अनादि अनंत वैसा का वैसा ही रहता है, मेरे में कोई बदगट होती नहीं है, ऐसा मैं पना करना स्वभाव में और पर्याय की वृद्धि हानि में अपनत्व नहीं करना, तो मेरा ज्ञान अभी बढ़ गया ऐसा करने लायक नहीं है। कुछ शास्त्र स्वाध्याय से क्षयोपशम बढ़ जावे तो मेरा ज्ञान बढ़ गया ऐसा लेना नहीं है। मेरा स्वरूप में तो अनंत ज्ञान की खानी भरी है, अनंत सुख की खानी भरी है, न उसमें कोई बढ़ता है न कोई उसमें कोई घटता है, पूर्ण होने से बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं और उसमें कोई कमी भी बिल्कुल होती नहीं है। ऐसा स्वभाव का अनुभव करना ये चौथी बात लिया है। अब कहते हैं कि जैसे सोने का दृष्टांत देते हैं, चिकनापन पीलापन भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है सत्यार्थ है। क्या सोना पीला होता है, चिकना होता है और वजनदार भी होता है, तथापि जिसमें सर्वविशेष विलय हो गए हैं ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ और असत्यार्थ है। सोना इतना नाम से ही अभेद ज्ञान होता है सोने का, एक सोना शब्द से सोने का अभेद ज्ञान होता है, तो वहाँ पीलापन चिकनापन भारीपन का विचार आता नहीं, ज्ञान में वो विषय नहीं होता, पीलापन आदि के यहाँ भेद का ज्ञान वहाँ नहीं होता, अभेद में भेद का ज्ञान
नहीं होता।
हाँ भले ही अभेद में भेद का ज्ञान गर्भित है लेकिन वहाँ भेद वाला ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। इसी प्रकार है ज्ञान जानता है दर्शन देखता है, ऐसे भिन्न भिन्न गुणों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, उसका भेद रूप अनुभव हो सकता है, तो पता चलता है अनुभव से उसका कि अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न गुण हैं, एक गुण है वो दूसरा गुण नहीं है। तथापि जिसमें सर्वविशेष विलय हो गए हैं ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है असत्यार्थ है। जिसमें सर्व विशेष समाविष्ट हो गए, विलय हो गए, छिप गए, सर्व विशेष जिसमें गर्भित हो गए, कोई विशेषता नहीं दिखने में आई, अभेद एकाकार अनंत गुण का एक रूप द्रव कैसा है, अनंत गुण का एक रूप द्रव है, उस एक रूप द्रव को जिसमें अनंत गुण का विशेष विलय हो गया है ऐसा आत्म स्वभाव है, उसको समीप जाकर अनुभव करना, मैं ऐसा अभेद स्वरूप हूँ और मैं ऐसा अभेद स्वरूप हूँ द्रव स्वरूप हूँ, उतना अभेद का और द्रव का भेद भी जान लेना नहीं है, ऐसा लेना है। क्या द्रव का भी भेद नहीं लेना, अभेदता का भी भेद नहीं लेना, क्योंकि अभेद भेद सापेक्ष है, पर्याय सापेक्ष है, ऐसा भी कोई सापेक्ष पड़ा नहीं लेना, निरालंब निरपेक्ष मेरा स्वरूप है, ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव करना, वहाँ सभी विशेषता एवतार्थ असत्यार्थ हो जाती है। अपने को गुण भेद की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अपने ज्ञान में गुण भेद की अपेक्षा होनी चाहिए नहीं, वरना ये होता है कि आत्मा में कितने गुण के अनंत गुण, हम कितने जानते हैं कि जितना हम 150 गिनती कर सके उतने ही जानते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मा का अधूरा ज्ञान होता है या आत्मा का पूरा ज्ञान होता है? पूरा आत्मा का ज्ञान होता है कि अधूरा ज्ञान होता है? तो पूरा आत्मज्ञान होता है, तो पूरा आत्मज्ञान होता है। और गुण तो इसके जो गुण है वो तो हमने बहुत कम जाने, अनंत गुण में से 150 को जाने वो तो कितना कम हो गया, तो भी वहाँ अधूरा ज्ञान नहीं कहने में आता है, क्योंकि अभेद का ज्ञान में पूरा ज्ञान आ जाता है। लेकिन दूसरे अनंत गुण नहीं जाने इसका क्या, तो दूसरे अनंत गुण जानने का आत्मज्ञान में कोई प्रयोजन नहीं है। क्या आत्मज्ञान में गुण भेदों को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है? हाँ, साकर की मिठास को अनुभव करना है, वही शक्कर है। दूसरे बहुत से गुण होने पर भी हमारे मतलब तो मिठास से है। क्या जैसे गुड़ होता है तो कोई कलर अच्छा होता है गुड़ का, जैसे कोई गुड़ का कलर ठीक नहीं होता है, लेकिन अच्छा कलर वाला मीठा नहीं होवे तो उसमें खारापन ज़्यादा होवे तो नमक डालते ना, नमक डालते उसमें तो हम पसंद करेंगे, तो हमें मिठास से संबंध है, उसका कलर से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमें आनंद से संबंध है, अभेद आत्मा का अनुभव करने पर हमें आनंद आता है, हमारा प्रयोजन आनंद से है, ज्ञान से भी आता है। दूरदृष्टि प्रकाश में हमें ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, हमें तो आनंद का सुख का प्रयोजन है, बस बात खत्म। फिर कितने गुण है कितने नहीं है, अनंत कैसे कैसे हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, ये पहचान करने के लिए बात है, प्रयोजन की बात तो सुख की रहती है, ज्ञान की, ज्ञान भी क्यों करना सुखी होने के लिए, आत्मज्ञान क्यों करना कि सुखी होने के लिए, तो प्रयोजन तो सुख का रहता है। इसलिए आत्मज्ञान में गुण भेदों की अपेक्षा नहीं है, ऐसी बात है। पहचान के काल में कुछ स्टेज दूसरा है, अनुभव का स्टेज दूसरा है, पहचान के काल में भाववासन का स्टेज है, अनुभव के काल में वो बात नहीं रही। जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले जो सीढ़ी पर पग रखा है ऊपर जाने के लिए वहाँ से उठाएंगे, वहाँ से उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे, तो ये तर्क करना ठीक है क्या कि अगर पैर उठाना था तो रखा ही क्यों? ऐसा कोई तर्क कर देवे तो कि जिस सीढ़ी पर से आप पैर उठा लेते हो उस पर पहले क्यों रखा, जब उठा लेना था तो रखा ही क्यों? ऊपर जाने के लिए पहले रखना पड़ता है फिर उठा लेना पड़ता है, तभी ऊपर जा सकते हैं, रखे नहीं तो उठाने का सवाल नहीं रहता और फिर ऊपर जाने का भी सवाल नहीं रहता। ऐसे जो ऊपर ऊपर चल जाते हैं तो नीचे का जो स्टेज है उसको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूपी आत्मा पहचाना जाता है, और जब पहचान होती है तो आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, आत्मा में अनंत सुख भरा है, ऐसी पहचान होती है। और तब परिणाम को सुख का आकर्षण होने से वो सुख के प्रति गति से, आवेग से, पुरुषार्थ से जाता है। अगर सुख नहीं होता तो नहीं जाता। तर्क करें कि अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो परिणाम आत्मा के प्रति कभी गति करता, और बाह्य पदार्थों के प्रति परिणाम जाता है। इसका यही कारण है कि वहाँ सुख का निश्चय कर रखा है। जहाँ जहाँ जिस विषय में सुख का निश्चय कर रखा है, भले ही वो निश्चय गलत है, तो भी परिणाम को वहाँ जाने के लिए रोक भी लगा सकते हैं, नहीं है। तो परिणाम को सुख का बहुत बहुत आकर्षण रहता है, ये बात एकदम सभी को अनुभव गम्य है। मुनिराज को देखे, निर्वस्त्र दशा में ऋतु का प्रकोप कोई तकलीफ नहीं देता होगा क्या? बहुत ठंड पड़ती है, छापे यहाँ तो बहुत पड़ती है ठंड, वहाँ दिगंबर मुनि कैसे रहते हैं? गृहस्थी तो कपड़े तो बहुत पहनते हैं, फिर भी घर में छिप कर रहते हैं, और सोते हुए तो और भी चद्दर रजाए वगैरह बहुत खिड़की बिड़की बंद करके हैं। निर्वस्त्र दशा का क्या हालत होगा? क्यों उनको ये तकलीफ नहीं होती? आर्थ ध्यान नहीं होता, गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी बढ़ जाती है, कुछ नहीं होता। क्यों? कि वो अपने भीतर में सुख में, इतने सुख में रहे, इतने सुख में रहते हैं कि वो बाहर आते ही नहीं। जैसे शरीर का उपयोग ही नहीं है, ऐसा सुखमय उपयोग हो जाता है कि जैसे शरीर का उपयोग ही नहीं है। तो शरीर में उपयोग जो फैलता है वो फैलता ही नहीं उनको, ऐसा आत्मा में सुख में डूब जाते हैं, उनको कोई असर होती ऐसी बात है। तो घर में ही नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, और ठंडी वहाँ तो ज़्यादा होती है, गर्मी भी वहाँ ज़्यादा होती है, फिर भी सुख में उपयोग लगा रहता है तो और जगह जाता नहीं, ऐसी बात है। जितना सुख का आकर्षण है जी, नहीं लोढ़े का चना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गप्पाबाजी है। कोई लोढ़े का लोहे का चना नहीं, एकांत सुखी मुनि वितरागी, मुनि एकांत सुखी है, उनको आर्त ध्यान होता नहीं। आर्त ध्यान होवे तो कर्म बंधन बढ़ जावे, लेकिन वो तो निर्जरा करते हैं, पूर्व कर्म की निर्जरा करते हैं, उस वक्त उनको वेदना बढ़ती है, कुछ भी उपसर्ग परिश्रम होता है, सुहा निर्जरा बढ़ती है, कर्म बंधन होता नहीं, आप ध्यान में आते नहीं कभी। ऐसा अनंत सुख में वो डूबकी लगाते हैं, तो ऐसा महा आश्चर्यकारी पदार्थ है, अद्भुत से अद्भुत, अनंत सुख से भरा हुआ महा आश्चर्यकारी पदार्थ है वो, तो शुद्ध नहीं का विषय है। उसका ज्ञान करके, श्रद्धान करके उसमें लीनता करना है तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या? हाँ वो तो मयावश करते ना, मयावश करते हैं, कभी कोई मुनि को बीमारी आ जाती है तो दूसरे मुनि विकल्प में होते हैं, वो मुनि मयावश करते हैं, निर्विकल्प में रहते तो भाव नहीं आता। तो भगवती आराधना का कोई प्रसंग है वो तो। क्या कहते हैं इधर के? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषताएं भूतार्थ है सत्यार्थ है ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है। भीतर में कुछ है ही नहीं, शून्य है, ऐसा नहीं है। अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा है, लेकिन अनंत गुणों के भेदों को गौण करना है कि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, सर्व भेद है वो विलीनता को प्राप्त हो गए, ऐसे अभेद आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता है, भूतार्थ है और असत्यार्थ है, वहाँ विशेषता मालूम पड़ती नहीं। पर विशेषता देखने को गुणभेद देखने की अपेक्षा भी वहाँ रहती नहीं, वहाँ तो सुख में बाधा हो जाएगी। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा भेद विकल्प उठने से जो निर्विकल्प सुख है उसमें बाधा पहुंचती है, तो इसलिए भेद वो सुख में बाधा कारक है और अभेद है वो सुख का साधक है, ऐसा समझकर अभेदता में एकाकार होना है। जय और एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है सत्यार्थ है। पानी गर्म होता है उष्ण होता है, जब ये अग्नि के संसर्ग में आता है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, देखिए वो भी सत्यार्थ है। क्या कहा, गर्म पानी का हम अनुभव करें तो पानी में उष्णपना है तो मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है, माने ही नहीं गर्म पानी की गर्म अवस्था को, माने ही नहीं बिल्कुल कि ये बात होती नहीं ऐसा है। ऐसे पर्याय में विभाव होता है, विकार होता है, नहीं होता है, वेदांत कहते हैं कि होता ही नहीं ऐसा नहीं है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता है भूतार्थ और असत्यार्थ है। पानी का स्वभाव, पानी गर्म है उस वक्त भी शीतल है, क्या जब पानी शीतल है तब तो स्वभाव शीतल है ही, लेकिन पानी गर्म हुआ तो स्वभाव बदल गया क्या, स्वभाव नहीं बदला, स्वयं ठंडा हो जाएगा पानी। अग्नि से गर्म हुआ पानी स्वयं क्यों ठंडा होता है, स्वभाव शीतल होने का है, तो स्वभाव तो पानी गर्म होता है उस वक्त भी शीतल शीतल ही रहता है, स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, पानी की गर्म अवस्था के काल में हमारे ज्ञान की पहुंच उसके शीतल स्वभाव तक होती है कि नहीं होती है, ऐसे अवस्था में विभाव होते हुए भी हमारी पहुंच हमारे निर्विकार स्वभाव तक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हो सकती है, ऐसी बात है, ऐसा लेना क्या, ये गर्म बना लिया है। दूसरा ये भी दृष्टांत ले सकते हैं कि पानी मैला होता है मिट्टी वाला, बरसात आती है पानी बहता है सड़क पे तो पानी मैला होता है, तो मिट्टी का संयुक्त पना हुआ पानी मैला हुआ, पानी मैला हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन स्वभाव से देखे तो पानी उस वक्त भी निर्मल है। निर्मल है कि मैं स्वभाव से निर्मल नहीं है क्या, निर्मल है। अगर उस वक्त स्वभाव तक ज्ञान नहीं पहुंचता तो उस पानी को निर्मल करना ही कोई प्रोसेस कर सकते नहीं, उसके निर्मल करने की प्रक्रिया ही नहीं होती। पानी मैला है और हम इसका पीने के लिए उपयोग करते हैं तो उसको मैलापन दूर करके उपयोग करते हैं, जब मैलापन दूर करके उपयोग करते हैं तो उसका निर्मल स्वभाव पहले जान लेते हैं, बाद में ये मैलापन दूर करने की प्रक्रिया होती है कि नहीं। वैसे संसार अवस्था में विभाव होने पर भी स्वभाव निर्मल है, स्वभाव तक पहुंच हुए तो कैसे परिणाम को निर्मल करें, ये प्रक्रिया बन सकती है, ये विधि को समझ सकते हैं। हमें संसारी है, हम संसारी है ऐसा पकड़ कर कहाँ तक बैठना है? अभी जब संसारी है उस वक्त भी असंसारी सिद्ध है कि नहीं है? चलो, अवस्था में संसार पना है, मलिन पना है, और स्वभाव में सिद्ध पना और निर्मल पना है, दोनों है क्या? दोनों है, है? हाँ, उसी क्षण एक ही काल में दोनों है, स्वभाव भी है और अवस्था में संसारीपना और विभाव भी है। जब दोनों है तो आपको वजन कहाँ रखना है, आपको कहाँ झुकना है? आपको सिद्ध पद को नमस्कार करना है या संसार पद को नमस्कार करना है? झुकना मैंने नमस्कार करना, ये नमस् समय सारा है किसके लिए है? सिद्धों के लिए है क्या ये श्लोक? किसके लिए है? ये जो संसार में है उनके लिए कि नमस् समय सारा है, उनको नमस्कार, समय सार को नमस्कार करो, संसार को नमस्कार मत करो। जहाँ तक हमारी आदर बुद्धि संसार में है वहाँ तक आत्मा में आदर बुद्धि आएगी। इसलिए तो तथापि करके के गौण कराते हैं, तथापि तथापि क्यों करते हैं कि ऐसा है फिर भी ऐसा भी है, परमात्मा भी अपने स्वरूप में खड़ा है और मलिन भाव पर्याय में विद्यमान है। अब आपको कहाँ जाना है, परमात्मा के पास जाना है या मलिन पर्याय उसमें रहना है? आपको कहाँ रहना है, किस घर में रहना है? दो घर है भीतर में, तो जो मलिन पर्याय है वहाँ रहने से तो दुख का अनुभव होगा, परमात्मा में जाएंगे तो सुख का अनुभव होगा। पसंदगी आपकी है, वस्तु तो ऐसी है, दोनों बात दिखा देते हैं आचार्य महाराज। आचार्य महाराज तो दो ही बात दिखा देते हैं, हाँ ठीक है, वहाँ अभेदता साधना, उपयोग में अहमपणा नहीं रखना, यहाँ तक के उपयोग में भी अहमपणा नहीं रखना। ऐसा त्रिकाली में अहमपणा करो कि उपयोग आदि पर्याय मेरी ओर आती है क्या? उपयोग आदि पर्याय मेरी ओर आती है, मुझे वहाँ जाना है वो बात नहीं है, क्योंकि वो तो अपनत्व रख लिया वर्तमान अंश में, वर्तमान अंश में अपनापन छोड़ देना है, क्योंकि यही पर्याय बुद्धि है, यही मिथ्या बुद्धि है। जाना संग थे, हाँ तो छोड़ दो दूसरे का संग, क्या दूसरे का संग से ऐसा होता है तो दूसरे का संग छोड़ दो। दूसरे का संग क्यों करता है उपयोग के, वहाँ सुख बुद्धि है इसलिए, सुख माना है संग करता है। उसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता उतार है। देखिए, आत्मा में मोह कर्म के संग में जाकर के मोह कर्म के उदय को अनुसर करके मोह भाव होता है, वो सत्यार्थ है, वहाँ परिणाम में मोह हुआ है, मोह कर्म के उदय से अपना वहाँ संबंध रख करके पर्याय में मोह हुआ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध स्वरूप है, जो स्वयं एकांत ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं एकांत निर्मोह स्वरूप है, क्या अवस्था में मोह है तब भी आत्मा स्वरूप से एकांत निर्मोह स्वरूप है। देखो यहाँ एकांत शब्द लगा दिया, ये सम्यक एकांत है। जैन दर्शन में तो अनेकांत होता है, कि अनेकांत भी सम्यक होवे तो सही है, वरना मिथ्या अनेकांत सही नहीं है। ऐसा एकांत भी सम्यक होना चाहिए, मिथ्या एकांत होना नहीं चाहिए। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अवस्था में मोहिपना है, उस वक्त भी अनादि अनंत सदा ही निरंतर स्वभाव भोग का अभाव स्वरूप है। स्वभाव में भोग की पहुंच नहीं है, विकार की विभाव की पहुंच स्वभाव में नहीं है किसी की, किसी भी आत्मा को। निगोद का आत्मा हो, कोई भी पर्याय में आत्मा हो संसार में, उसकी विभाव की पहुंच पर्याय में समाप्त होती है। विभाव पर्याय तक व्यापक होता है, व्याप्ता है, इससे आगे जा करके स्वभाव में व्याप सकता। स्वभाव कभी मेला हुआ ही नहीं, मलिन हुआ ही नहीं, विभाविक हुआ ही नहीं, स्वभाव स्वभाव रहा है। ये जानकर भव्य जीव को आनंद होता है, खुशी होता है कि मेरे स्वभाव में कभी मोह गया नहीं, मैं तो हमेशा निर्मोही रहा। ऐसा स्वभाव को संभालने से, मुक्त मुक्त करने से, अपने अपना स्वरूप जान करके अनुभव करने से कि मोह है वो अवस्था में भी रहने वाला नहीं, स्वभाव में तो था ही नहीं, अवस्था में भी वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्वभाव को अनुभव करने से अवस्था में भी सब जो सुधार चाहिए वो सुधार हो जाता है। स्वभाव में तो गड़बड़ी हुई नहीं है, वहाँ तो सुधार करने का सवाल भी नहीं रहा। इसलिए स्वभाव को संभालने के लिए ये सब बातें बताई है आचार्य महाराज ने।
वासुदेव से सिमंदर भगवान।